और मेरा ख्याल है सैटरडे संडे को उनका फ्यूनरल है। ही डाइड जोरा से होता डाइड यस्टरडे, कल 8 तारीख को उसकी डेथ हुई है। ऑफ कोर्स बच्चा बच्ची कोई भी किसी की भी डेथ हो इट्स सैड, मगर ये दोनों यंग मौतें हैं। जोरा से होता वॉज 52 ईयर्स ऑफ एज, वेयर एज ये जो पुलिस ऑफिसर हैं ही वॉज जस्ट 29-30 ईयर्स ऑफ एज। इट इज सैड। चलिए साहब, गीत तो मैं जो आपको सुनाना चाह रही थी, ये वो कहते हैं ना कि नेक दिल इस शख्स को जो पुलिस ऑफिसर है ओपीपी ब्रैम्पटन से इसका ताल्लुक था। ओंटेरियो प्रोविंशियल पुलिस का एक अफसर मंगल को शुमाली ओंटेरियो में सदरन ओंटेरियो में ड्यूटी के दौरान इसकी डेथ हुई है। कहते हैं ये व्हाट अ पायस यंग मैन ही वॉज, और हमेशा इसको सवाय मदद करने के और किसी चीज के बारे में भी इल्म नहीं था। ब्रैम्पटन से ताल्लुक रखता था, 29 ईयर्स इसकी एज थी, त्रौन बाली इसका नाम था। और ये मंगल को तकरीबन यस्टरडे 12:30 पर ये ऑन्टेरियो में टोरंटो से तकरीबन 950 किलोमीटर शुमाल में वाकई एक गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गिरफ्तारी की कोशिश की और वो गाड़ी ने इसको टक्कर मारी। बहरहाल इनको शदीद जख्मी आए, चोट लगी, एट द स्पॉट इस बच्चे की डेथ हो गई है। जो इस वक्त कमिश्नर पुलिस है उन्होंने बताया कि 18 साल का जस्टर विरोनो है जेनी सेहत के कानूनी एक अस्पताल से ये शख्स फरार हुआ था। यानी जिस शख्स ने मारा, या तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग के चक्कर में लोग मार देते हैं, ये मेंटल इलनेस में हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से ये भागा था। और बहरहाल अब क्या होगा उसको, तो इट्स सैड, इट्स वेरी सैड, रियली सैड। यकीनन हर माँ बाप, मैं सिर्फ ब्रैम्पटन की बात नहीं करती, हर माँ बाप इस सदमे को महसूस करेंगे। और हमारे जो मेयर ब्राउन है पैट्रिक ब्राउन, उन्होंने भी इसके बारे में यही कहा है कि इस सदमे को महसूस किया जाएगा। चलिए साहब, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ हमारे बहुत अच्छे जनाब अजीम मियां साहब से। मुझे कहने लगे मैं जरा बाहर हूँ, मैंने कहा अजीम भाई ऐसे उम्र से बाहर नहीं ना फिरना चाहिए। बागड़ साहब ही इज अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, अ वंडरफुल मैन रिप्रेजेंटिंग जियो सिंस एवर, सिंस ही स्टेप्ड इनटू द जर्नलिज्म। बहरहाल मीनवाइल एक कलाम वापस आती हूँ, मेरे साथ होंगे जनाब अजीम मियां साहब, समाप्त करना।
तस्वीर पड़े मकारां वाली ते तू दाढ़ी कीती चिट्टी, पर आया माल तू एवें खांदा जिमें तरकारी लगदी मिठी। सीती वड़े ना कबर अंधेरी किठी, तैनू खबर तद हो सी भुलिया जद मुंह ते आसी मिट्टी, तैनू खबर तद हो सी भुलिया जदूं ते आसी मिट्टी, तेनू खबर तद हो सी भुलिया जद मुंह ते आसी मिट्टी। बार सूरत बड़ी सुथरी, लोकां अगे नेक बनया फिरदा,
का कलाम है, मगर मुझे तो वही सूरत याद आती है, अलहाक मुतकासिर हत्ता ज़ुरतुम अल-मुकाबिर, कि इंसान का हवस और मजे की बात में आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, हर इंसान अपनी तरह से जिसको मौका मिल जाए वो उसके लिहाज से गलत काम करता है। मेरा एक बहुत प्यारा बेटा है, आज उसने मुझे शीशा दिखाया, उसने कहा कि बहुत से लोगों ने फ्रॉड्स किए हुए, आप भी तो उसको उनको एडवर्टाइज कर देती हैं ना, एंड आई थॉट कि यस मैंने मगर मेरे में इतनी कर्टसी जरूर है कि मैं उनको कहती हूँ कि अगर आपने गलत किया है तो आप लोगों के पैसे वापस कर दें। आई यूज टू एडवर्टाइज, आई डिड नॉट, आई डोंट एडवर्टाइज देम एनी मोर। एक और एडवर्टाइजर है जिसके ऐसी ही सूरत हाल थी, मगर आई फील सैड, कैसे हो सकता है मैं $2 भी खर्च होते हैं और अगर मैं जाया करती हूँ तो आई फील बैड, कैसे हो सकता है कि एक आदमी 2.5 लाख 3 लाख किसी को अपने घर पकड़ा दे जाके कि तुम मेरे घर को रीफाइनेंस करा के मुझे लगा दो, देयर इज अ ग्रीड इन्वॉल्व। एक खातून है, आज भी अभी उनका मुझे मैसेज आया है, मैं आपको बल्कि बता भी देती हूँ, उसने मुझे क्या शेयर किया, $20,000 था, अपने मियां को बताए बगैर उसने किया। अगेन हेयर कम्स द ग्रीड, अगर आप ग्रीड के साथ कि मुझे ये आदमी ने 20,000 मैंने देना है इसको 35 करके दे देगा, नोबडी इज गोना गिव यू 35,000। ठीक, तो बहरहाल सुन रहे हैं प्रोग्राम साज़ो आवाज़, मैं आपके साथ आरिफ मुजफ्फर, 1990 जनाब हमारे साथ खलील अजहर साहब भी इस वक्त हैं। आई हैव 6141।
सलाम अलैकुम आपा, कैसी हैं आप?
अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। खलील भाई जी बताइए,
आप दो खबरें सुनाए, आप बड़ा अफसोस हुआ, बहरहाल दर्शन सोता साहब से तो खैर पुरसा दूंगा मैं जाके, इनका घर भी मालूम है मुझे, मिसागा में है,
बताइए वो जरूर पुरसा जरूर कीजिएगा। अब
जरूर आपका भी जिक्र करूंगा कि आपसे मुझे इत्तला मिली हुई के। और दूसरा मैं ये कह रहा था, अभी जो सूफी का गाना सूफीज्म पे लगाया, बड़ा जबरदस्त तसव्वुफ पे, तो मुझे वो एक पंजाबी का हॉल याद आया, हालांकि मेरे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, मगर मैं पढ़ लेता हूँ या सुना तो याद रखता हूँ, ये एक मेमोरी की बात है। तो बहरहाल सुल्तान बाहू वो मशहूर बुजुर्ग है पंजाब में, वाकिफ होंगे पंजाबियों।
जी बिल्कुल, आप कैरी ऑन करें, आप कैरी
ऑन। जी जी, आवाज कट गई तो मैं समझा डिस्कनेक्ट हो गई कॉल। बहरहाल सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था पंजाबी में कि बाहू फकीर कहलाने दे उन्हों मुस्तहक हों दे जिनकी खबर पे जिंदा मंडला दे।
बहुत शुक्रिया। एक्चुअली खलील भाई मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक वक्त में दो काम कर रही होती हूँ, उनसे बात करवाओ, आप कैरी ऑन करें बिकॉज मुझे काउंट करती हूँ इसलिए प्लीज उसमें, ताकि हम एयर टाइम भी ना वेस्ट करें, तो आप कैरी ऑन करें, मैं एक वक्त में तीन काम कर रही हूँ।
जी जी कर लीजिए। मैं आपको बोला कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कौल था पंजाबी में कि बाहू फकीर कहलाने के मुस्तहक उन्हों होंदे जिनकी खबर पे जिंदा मंडला दे हो।
क्या बात।
और इस वाक़े को पढ़ के अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा था कि जहाँ के लोग है जिंदा खलंदरों के तुफैल गुलों के साए में कांटों की खिल गई तकदीर।
بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے اس کو شیئر کیا سلطان بہو کا. آف کورس نیک لوگ ہیں. یہاں پہ اس کو اس اینگل سے بھی دے سکتی ہوں میں کہ نیک لوگوں کی صحبت اور تصوف کی جو صحبت ہے وہ ہمیں اس سمت لے کر کے. بہت شکریہ آپ خلیل بھائی.
آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے.
بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آئی ڈونٹ نو از ہی ود می اور ناٹ. السلام علیکم. آپ میرے ساتھ ہیں. 6141 ہلو. نہیں میرے ساتھ نہیں ہے. 6141 میرے ساتھ نہیں ہے. کسی بھی وقت ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جناب عظیم میاں صاحب میرے ساتھ ہوں گے. ایک سپانسر لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ
کسی ویڈنگ ریسپشن برتھ ڈے پارٹی یونیورسٹی واسطے خوبصورت ہال لب رہے ہو آؤ تو ہم لے کے چل رہے ہیں پریزیڈنٹ کنونشن سینٹر نواں اور خوبصورت. دو بڑے ہال 100 to 600 تک مہمانہ دی گنجائے. وڈی آسان پارکنگ. سب تو خاص گل سویٹ لذیذ کھانا تازہ کھانا. گاڑی تقریب میں 4 چند لگا دے گا. کسی بھی موقع دی فنکشن دی بکنگ ہے تو کال کرو پریزیڈنٹ کنونشن سینٹر دے سکھا جی 416-736-6820 416-736-6820.
ٹرک سروسنگ کھیتر وچ اونٹاریو دا موہری نا کوئک ٹرک لیو. تسی ایک ٹرک چلاونے جا فلیٹ ہے گی جے تو ہڈا ٹائم ویلیو رکھنا. اپوائنٹمنٹ بھی لوڑ نہیں. فرسٹ کم فرسٹ سرو. سٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی. ٹرینڈ ٹیکنیشنز راہی بیسٹ ہائی گریڈ آئلز فلٹرز. انجن دی جان بداون دے. اور کی چاہیدا. تین لوکیشن تو تہاڈی سیوا کر دے. کیو ٹی ایل ایگزٹ 268 ہائی وے 401 کیمبرج. ایگزٹ 579 ہائی وے 401 ناپنی. ایگزٹ 5 کیو ای ڈبلیو فورٹ ایئری. سروس اور کوالٹی وچ سب تو پرمکھ نا کیو ٹی ایل 519-622-0660. جو آوے سو راضی جاوے. پیٹرو کینیڈا پیش کر دے جورون ہیوی ڈیوٹی ڈیزل انجن آئلز ہن فل سروس سیونگز نال 10W30 سنتھیٹک $20 ڈسکاؤنٹ 5W30 $40 ڈسکاؤنٹ آفر لمیٹڈ ٹائم لئی 5W30 کوئک سٹارٹ ہور آئل فلو ٹھنڈے موسم وچ جیتو 10W30 انجن دی کارگزاری نو بنائے رکھدا کیو ٹی ایل دی تین لوکیشنز تے پوجو اور لاب چکو ایگزٹ 268 کیمبرج ایگزٹ 579 ناپنی ایگزٹ 5 فورٹ ایئری پیٹرو کینیڈا اور QTL بلے بلے انوٹھا ساک.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ سوفا سیٹ میٹریسز ڈائننگ ٹیبل ڈیکوریٹو آئٹمز گل کی جی سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج
142 کینیڈی روڈ برامٹن 9058747-1171.
ہاؤس سیٹ محل تے سواد دی آرو دنیا ہوئی دیوانی ہو شدھ کھوئے دی جے مٹھیائی رج رج کے تسی کھانی نان ویج تے ویج فوڈ دا سواد بڑا طوفانی ساڈے سویٹ محل دا لبنا نی کوئی زانی.
ودھیرے جانکاری دے لئی تسی سمپرک کر سکدے ہو سکھا تنگ جی نو 416-679-9991 تے 416-679-9191.
میری پورے سال کی سیونگ $400 ہوئی ہے.
میری سیونگ $350
اور میری سیونگ سب سے زیادہ ہوئی ہے. میں نے سیو کیے ہیں $2000.
کیا چمتکار کیا, مجھے بھی گر سکھاؤ نا.
ہمارے پاس 2 گاڑیاں اور 1 گھر ہے اور ان سب کی انشورنس ملا کر میں نے زبردست سیونگ کی ہے. آپ بھی اپنی گاڑی اور گھر کے انشورنس میں خوب سیونگ کر سکتے ہیں. ٹرم اینڈ کنڈیشن اپلائی. آل اسٹیٹ پکرنگ ایجنسی کے راجا باشک 6472903773.
ہاں جی ذرا ایک ویب سائٹ نوٹ کرو afcgrocery.com. اے ہے جی ایشین فوڈ سینٹر دی برانڈ نیو ویب سائٹ جتھوں تسی انڈو کینیڈین گروسری مٹھائیاں تازیاں سبزیاں پھل فروٹ انڈیا والے بھانڈے سجاوٹ دا سامان سارا کچھ جو سٹور تے جا کے دیکھنا. ہن ایشین فوڈ سینٹر دی اس ویب سائٹ تے دیکھو $100 یا اس تو زیادہ دے آرڈر تے پاؤ فری ڈیلیوری ان آل جی ٹی ایریاز فری کرب سائڈ پک اپ اویلیبل ان آل لوکیشنز آن سیم ڈے وزٹ afcgrocery.com.
جی صاحب اے ایف سی گروسری کی تو ہم نے بات کر لی, ایک ملاقات کی طرف اور لے کر کے جانا چاہتی ہوں. شکریہ. اگر آپ اپنے گھر میں یا آفس میں پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو محمد سلیم کے نام کو یاد رکھیے گا. ونڈرفل مین. ایون آپ نے ایکسٹیریئر اپنی پوری کی پوری بلڈنگ کا ایکسٹیریئر کر, اکثر آپ دیکھیں گرے یا بلیک کلر کی بلڈنگز نظر آتی ہیں, دے ڈو دیٹ ایز ویل اینڈ دیٹ از ویری لانگ ٹرم. इंटीरियर अगर आपने कहीं वाटर लीकेज है, स्टेन्स हैं, तो बाजू का स्टेन जाते भी नहीं है, दोबारा अपीयर हो जाते हैं। सलीम साहब से राब्ता कर लीजिएगा, सलीम का नंबर 6472711974 में पैदा हुए थे, वेरी यंग एनर्जेटिक मैन, 6472711974 271974। मैं आपको लेकर के जाना चाहती हूँ पायल ज्वेलर्स पे, अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइंड जनाब असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आई नो असलम भाई सिंस ऑलमोस्ट सिंस व्हेन वी स्टार्टेड आवर शो मॉल्टन के इलाके में, और असलम भाई से बहुत सारा डील करने का, वेरी स्वीट मैन। अच्छा मजे की बात यह है, अभी असलम भाई ज्वेलरी को बनाते भी हैं, अगर आपकी ज्वेलरी की कोई नग निकल गया, कोई पत्ती टूट गई, कोई टांका टूट गया, ही डज ऑल दैट एज वेल, और अगर आपने कस्टम डिजाइन कोई ज्वेलरी करवानी है, ही डज दैट एज वेल। वैसे तो हम कहते हैं सोना महंगा हो गया महंगा हो गया, मगर आप देखिएगा वक्त के साथ इंसान उसके मुताबिक जीना सीख लेता है। आजकल जो टर्किश ज्वेलरी है वो कम वजन में फैलाव वाले जेवरात और बड़े पसंद किए जाते हैं, वो पायल ज्वेलर से असलम भाई मेरे साथ हैं। असलम भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
गुड बजियान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है?
अल्लाह का बड़ा शुक्र है असलम भाई, और मुझे ये बताइएगा
अब तो लूट सेल हो गई है, यकीन करें बाजी जान, गोल्ड
यार सोने की कीमत कम हुई।
आप कहते हैं ना गोल्ड सस्ता, यकीन करें सस्ता हो गया, मजा आ जाएगा अब मेरा ख्याल दोबारा फिर ना कहीं।
आप देखिए चांदी की कीमत कितनी कम हुई है असलम भाई के पास, चांदी के जेवर।
हाँ चांदी तो मैं कहता था कि वो तो है मगर गोल्ड भी कम हो गया, गोल्ड भी बाजी जान कम हो गया। आप आ जाए अभी छोड़ के आ जाए, ले रहे अभी बुक करवा ले।
आजकल क्या चल रही है प्राइस आउंस की?
आउंस की बाजी जान 6800।
अभी फिर भी यू नो व्हाट, अगर आप एक साल पीछे चले जाएं तो 56-57 का था, मगर आज फिर 68 है, बट यस इट क्रॉस 7000 पर आउंस, इज दैट राइट?
जी 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 बिल्कुल 7400 चला गया था ना भाजी जान,
74 पे चला गया था,
74 से वापस आया, ये 6800 का है,
9057979790 7807879। बस आपने पायल पे पहुंचिएगा, असलम भाई हैं बेटे वहाँ पे,
टर्किश मेरे पास, टर्किश वो बैज भी नहीं है, बैज भी सिंगल जो पहनते हैं लेडीज, सिंगल बैंगल, बैज भी बैंगल, कड़ा बैंगल, वो मेरे पास टर्किश आए हैं, डिजाइन यकीन करें देखने के लायक है, अच्छे लाइट वेट में 10 ग्राम 12 ग्राम 13 ग्राम बस,
ये ओवल शेप जैसे हमारी,
ओवल शेप के, ओवल शेप बिल्कुल,
ये जैसी हमारी रिस्ट है ना बिल्कुल गोल नहीं है,
बिल्कुल बिल्कुल,
तो वो बिल्कुल इसके लिहाज से ताकि जेवर का बड़े खूबसूरत। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफा जरूर पहुंचिएगा, और पायल पे जाना कहाँ पे, पहले तो एड्रेस दे देना
भाजी जान, पायल ज्वेलर एक ही तो है असलम भाई, पायल ज्वेलर एक ही तो है पूरे इधर टोरंटो में कनाडा में एक ही तो है। तो एड्रेस है हमारा 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, यूनिट 42, ब्रैम्पटन, एयरपोर्ट एंड नॉर्थ पार्क मेन इंटरसेक्शन है, एयरपोर्ट एंड नॉर्थ पार्क। टेलीफोन नंबर है 9057978789। भाई यार ये चेने भी आई हैं इसकी, वो तो बैंगल है ना, चेने।
अच्छा चेने, अच्छा भाई चेन के बारे में बताएं, मैं तो आज सुबह भी आपके पास आना चाह रही थी, यकीन कीजिएगा छोटे साइज की चेन्स भी हैं, और आजकल तो वो बारीक बारीक चेन्स पहनने का, बच्चियों को देने का, और आप यकीन करें मैं कितनी मेरी उम्र ज्यादा हो गई, बट आज भी मैंने उस दिन अपने कानों में कोई चीज पहनी हुई थी, जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं में थी तो पता नहीं क्या इम्तहान हुआ था, तो मेरी अम्मी ने मुझे लेके दिए थे इयररिंग्स, तो मैंने वो ही पहने हुए थे, और चेन्स
बालियां आई हैं मेरे पास, है टर्किश बालियां आई हैं, डिजाइन देखने वाले हैं ऐसे जैसे डायमंड पहना हुआ, उनकी पॉलिश है, उनकी पॉलिश से पता चलता है कि कोई चीज पहनी हुई है,
टर्किश ज्वेलरी,
टर्किश ज्वेलरी बिल्कुल, टर्किश ज्वेलरी,
ये फैलाओ वाली
शेमेंट आ गई है, ये शेमेंट आपको पता ही है, तकरीबन ये 4-5 माह बाद के बाद आती है ये शेमेंट ना, तो ये शेमेंट अभी है मेरे पास, काफी सामान निकला भी है भी मेरे पास पड़ा है, तो बहुत अच्छी प्राइस ही बहुत अच्छी है, यकीन करें बहुत अच्छी प्राइस है, बहुत अच्छी प्राइस है, मार्केट से कम। तो ये किधर जाना है? पायल ज्वेलर पे,
पायल ज्वेलर्स पे, नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट के इंटरसेक्शन पे पायल ज्वेलर्स। होल्ड करो
मेरे असलम भाई,
जीजा भी मेरे असलम भाई, माजिद भाई आई मिस यू माजिद भाई,
असलम भाई असलम भाई
असलम भाई असलम भाई फ्रॉम पायल ज्वेलर्स। असलम भाई मुझे ये बताइएगा, आप तो वहाँ आप तो बिग बॉस हो गए हैं और अब आपके बच्चे माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, आप को जाहिर है कम्फर्ट देते हैं, मगर योर प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर क्योंकि वो उस तजुर्बे से सीख रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जब आए तो क्या रेफरेंस दें, प्रोग्राम साजोवाज का रेफरेंस दीजिएगा, आप मेरा रेफरेंस ना भी दें,
नाम ही काफी, नाम ही काफी है, यकीन
आप मेरा रेफरेंस ना भी दें, आप अपनी कम्युनिटी का रेफरेंस,
मुझे यकीन करेंगे आप, मुझे यकीन करेंगे जितने कस्टमर आपके आते हैं प्रोग्राम सुन के, जितने भी आते हैं मुझे पता चल जाता है कि ये आरफा बाजी के रेफरेंस आएंगे, ये मुझे बाद में बताएंगे कि आरफा बाजी के प्रोग्राम सुन के आए हैं, बिलीव मी। और मैं क्या देता हूँ कि आपने आरफा बाजी के प्रोग्राम सुन के आए हैं।
असलम भाई इससे मुलाकात कीजिए, बच्चे बड़े अच्छे हैं, यंग बच्चे माशाल्लाह ब्यूटीफुल किड्स, पायल ज्वेलर्स, ये बिल्कुल वही जगह जहाँ नो फ्रिल्स है, टिम हॉर्टन्स है, ये ब्रोकरेज है गोर्डी खुमन साहब की ब्रोकरेज है, और पायल ज्वेलर्स एयरपोर्ट रोड पे नुक्कर का प्लाजा है, एयरपोर्ट एंड नॉर्थ पार्क के इंटरसेक्शन के ऊपर पायल ज्वेलर्स, और एयरपोर्ट से आप इनका बोर्ड देख सकते हैं, एंट्री आपको फ्रंट से आना पड़ेगा, प्लाजे के अंदर आना पड़ेगा। असम भाई फोन नंबर दीजिए प्लीज,
फोन नंबर है 905-790-7879 905-790-7879 905-790-7879 बस। यार ये फैमिली का आपका शोरूम है, दुकान है, यकीन करें आपको फैमिली जिस तरह प्यार है ना वही मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल फैमिली की तरह, बच्चों की तरह, फैमिली की तरह, ये आपको नहीं लगेगा किसी गैर जगह पे आप आ गए हैं। बस
सही असलम भाई हमारे साथ हैं, असलम भाई ये मेरे नहीं, ये हमारे असलम
दुबई का चश्मा,
दुबई का चश्मा, दुबई की ज्वेलरी लेके बैठे हुए हैं, और असलम भाई फ्रॉम पायल ज्वेलर्स, आई लव यू असलम भाई, थैंक यू वेरी मच,
थैंक यू भाई असलम
भाई से आपकी मुलाकात हुई। बशी भाई आपका भी फोन आ रहा है, बिल्कुल मुझे अंदाजा है, और असलम भाई का गाना भी मैंने आपको सुना दिया, एक और गाने की तरफ आपको लेके चलती हूँ, वो मेरा ख्याल है मेरे साथ ही हैं अपने क्या उसका नाम है शहजादे भाई अजीम मियां साहब, मगर वो जंग कर रहे हैं इस वक्त, जंग के हालते जंग में, आप पूछेंगे कौन सी जंग में है, वो टेक्नोलॉजी की जंग में इस वक्त हमारे साथ हैं, तो ही कैन बी विद अस एनी मिनट, बट बिफोर ही कम्स लेट मी टेक यू टू एन अदर a beautiful song, old Pakistani songs mein, and aye sahab mujhe tum nazar se gira to rahe, oh my god nahi, mera dil tha ki main koi aur gana aapko sunati, wo ishq jo humse root kiya, chaliye sahab wo ishq jo humse root kiya uska hal sunaye kya, Farida Khanum sahiba ki awaaz aapki samaadon ki nazar,
जो हम थे टूट गया, अब उसका हाल बताए क्या, वो इश्क जो हम थे टूट गया, अब उसका हाल बताए क्या, कोई मेहर नहीं
خوبصورت شعر ہے کہ ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی جب جسم سارا جلتا ہو تو دامن دل کو بچائیں کیا. بہت خوبصورت آواز فریدہ خانم صاحبہ کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی. لیٹ می ٹیک یو ٹو آر ونڈرفل بردر, آئی تھینک ہم ویری مچ. مجھے کہنے لگے کہ میرے ریٹس بڑھ گئے, حالانکہ کبھی انہوں نے مجھ سے دھیلے کی بات نہیں کی. انتہائی بے لوس انسان, شاید میں بڑی مین ہوں, آئی تھنک سو, کہ آئی ٹیک این ایڈوانٹیج آف مائی بردرز اینڈ سسٹرز. بٹ نو, آپ لوگ پیار کرتے ہیں عظیمیہ صاحب کو. عظیمیہ صاحب نے کبھی اپنا پلیٹ فارم نہیں بدلا, کبھی فلور کراس نہیں کیا. آپ کو پتا ہی ہے میں کس سینس میں کہہ رہی ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ادارے سے بہتر مل رہا ہے تو دوسرا ادارہ ظاہر ہے اپنے بہترین لوگوں کو وہاں سے اٹھانا چاہتا ہے. بٹ دا مین نیور چینج ہز پلیٹ فارم. دا ڈے ون ہی جوائن ود دا جنگ, اور جنگ اخبار کو انہوں نے جوائن کیا, پھر جنگ سے جیو بھی آیا, پھر ٹیلی ویژن بھی ہوا, پھر نیوز پیپر ہے. بٹ ہی نیور چینج ہز فلور, آلویز دیئر ود جنگ. دیٹ از جناب عظیم میاں صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں. عظیم میاں صاحب, میاں صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام, بالکل عارفہ, میں بہت خیریت سے ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں.
اسے کہتے ہیں
کہ آپ نے غزل وہ لگائی ہوئی ہے کہ جو صورت حال کو مطلب کہ اس سے اچھا بیان کرنا اور اتنا مؤثر بیان کرنا کسی اور غزل میں یا کسی اور شاعر کے لیے ممکن نہیں, کہ سچا شعر بھی سنانے کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سچا شعر سنائیں.
کیا بات ہے صاحب, ہم سچا, کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں, پھر سچا شعر سنائیں کیا. میں یہ اگلا بھی اس کا بڑا خوبصورت ہے, آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن پہ پھیل گئی جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا. میں دنیا کی طرف دیکھتی ہوں تو دنیا میں ہر طرف آپو تاپی پڑی ہوئی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. آپ دیکھیے یہ اتنا عرصہ سیز فائر رہا, اور کل ایک ڈرون کے اٹیک کے بعد امریکہ نے کل رات بھی بمباری کی ہے, مگر ایران نے یقیناً پسپائی اختیار نہیں کی. ایران نے بھی ریٹرن اپنے اٹیکس کیے ہیں. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے, اچھا مزے کی بات یہ, ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہم پیکٹ کر لیں گے, منوا لیں گے. کیا فرمائیں گے جو اس وقت کی جو لمبو سچویشن ہے اباؤٹ ایران اینڈ امریکہ؟
قوتیں جو ہیں ان کا نقصان دونوں کا ہوا ہے, ایک کا زیادہ ایک کا کم, ایک بات. دوسری یہ کہ سچویشن جو ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے, اور اس کمپلیکس سچویشن کی وجہ سے دونوں کے پاس آؤٹ لیٹ نہیں ہے. ایران جنگ بند کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس آپشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ ٹرمپ صاحب کی جو ہے شرائط کو مانے, وہ اصرار کرتے ہیں. جب ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اصرار کرتے ہیں تو ایرانیوں کے پاس ایک بات ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ ان کی تہذیب کا, ان کی تاریخ کا, دونوں کا حصہ ہے, اور ان دونوں میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ تاک ہیں. انہوں نے دنیا کی ایک سیولائزیشن نہیں متعدد سیولائزیشنز دیکھی ہیں اور ان سے ڈیل بھی کیا ہے, اور وہ اپنے وقت میں بڑی ایک عظیم قوت رہی ہے, اور آج بھی جو ہے وہ اس جغرافیہ میں اس پلینٹ پر ایک اہم ملک ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ ڈپلومیسی کرنا جانتے ہیں, وہ ڈپلومیسی سے جو ہے وہ بھی ٹائم بائی کر رہے ہیں, اور ٹرمپ صاحب جو ہے وہ بھی ٹائم بائی کر رہے ہیں کہ کہیں پر کوئی گرفت کوئی کمزور پڑے تو یا یہ جان چھڑا لیں اس سے جنگ سے, اور یا ایران جو ہے وہ جنگ سے جان چھڑا لے. तो दोनों तरफ जो है आग बराबर की लगी हुई है, लेकिन बात यही है कि सिचुएशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स और हालात जो है वो इसी तरह से यही होता है कि जंगें जितनी भी हैं, आप देखें दो जंगें आपके और हमारे हमें तारीख में भी ज्यादा पढ़ाई गई जो वेरी रिसेंट है, उसमें भी आपने ये देखा होगा कि टाइम जो है, टाइम का फैक्टर हमेशा से बड़ा अहम रहा है और वो टाइम का फैक्टर दोनों बाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये भी होता है कि जब टाइम बाई किया जाता है तो उसमें फिर नजाकतें भी आ जाती हैं और छोटा वाकया बड़ा वाकया हो जाता है, और बड़ा वाकया होने के बाद जैसे यूरोप के एक शहजादा था उसका कत्ल हुआ तो वो फिर जाके बात कहां रुकी, वहां जंग अजीम पर जाकर रुकी। तो जंग अजीम पर रुकने का वाकया तो बजायर एक कत्ल था, लेकिन उसके बाद इंसानियत कत्ल हुई और वो आपके सामने है। तो ये हालात इनको मैं मखदूश और खतरनाक कहूंगा, दोनों तरफ से अपने अपने तौर से जो भी अपना दबाव है उसका इस्तेमाल हो रहा है और उसका कोई हल अभी तक नहीं निकल रहा, जबकि दुनिया जो है वो मुआशी और अफरात जर में मारी जा रही है और महंगाई में मारी जा रही है, और सिर्फ ये नहीं कि भाई मिडिल ईस्ट के ममालिक मारे जा रहे हैं, उसमें दुनिया सारी मारी जा रही है, अमरीका और कैनेडा में, आप कैनेडा में बैठी हैं आप अंदाजा करें कि महंगाई का वहां क्या सूरत हाल है और कितनी महंगाई बढ़ गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहां चली गई है, लोगों के रोजगार पे क्या असर पड़ा है। हालांकि आप इसमें फ्रीक नहीं है, आप मुतासर ममालिक में से हैं, इसी तरह से पाकिस्तान मुतासर ममालिक में है, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो है डायलॉग होना चाहिए। हमेशा से दुनिया में डायलॉग को, मुजाकरात को, मुजाकरात की मेज को जो है उसका खैर मकदम किया गया, लेकिन अमलन जो है वो ताकत का राज है कि जिसके पास ज्यादा ताकत है वो ज्यादा डिक्टेशन देता है, जिसके पास कम ताकत होती है वो कम डिक्टेशन देता है। ईरानियों के पास डिप्लोमेसी है, अमरीका के पास ताकत है।
मियां साहब, मैं अगर पीछे की तरफ चलती हूं तो इराक के पास एटम बॉम्ब की इराक ने कोशिश की तो उसको मिलियामेट किया था इसराइल ने। अमेरिका ने भी, मैं कल ही की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि यूरेनियम जो कि 20% एनरिच्ड यूरेनियम था वो किस तरह से निकलवा लिया था। ये जो ईरान का मामला है, कहने को यूरेनियम का मामला हम कह रहे हैं, बट द बेसिक थिंग इज द नेक्स्ट अपकमिंग पावर इज चाइना, एंड चाइना ने जो बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट के जरिए अभी कुछ अर्सा, कोई 4-5 महीने पहले की बात है, जो इनकी ट्रेन ऊपर से ताजिकिस्तान और वहां से होती हुई ईरान के रास्ते पोर्ट से इन्होंने अपना मटेरियल यूरोप की तरफ सप्लाई किया था। दिस वाज अ सेकंड ट्रेन, और अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ और सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ चले जाएं तब बरतानिया के लिए जर्मनी वाज दैट थ्रेट, क्योंकि वो भी, उनको भी ये था कि इन्होंने बहरुल कायल में हमें रोक लेना है, तो वो भी बेल्ट एंड रोड का एक प्रोजेक्ट, उसी टाइप का एक प्रोजेक्ट था। तो असल में अमेरिका ईरान को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक करके चाइना को ब्लॉक करना चाहता है। अगर उसने तेल भी बंद किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी आके बंद किया है, तो बुनियादी तौर पर दे स्क्रूड अप चाइना, क्या फरमाएंगे
जी? नहीं, बिल्कुल, देखिए बात ये नहीं है, बात तो ये है कि हॉर्मुज को बंद करने से सबसे ज्यादा कौन सा मुल्क मुतासर हुआ है? सबसे ज्यादा एक सिंगल कंट्री जो मुतासर हुआ है वो चाइना, इसलिए कि चाइना जो है वो ईरानी ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है इस वक्त, और उसको अपनी जो है वो जरूरत है इस बात की कि इतनी बड़ी अपनी जो उसकी इकोनॉमी है उसके लिए उसे ऑयल की जरूरत है। और जो नतीजा ये है कि ये तो फिर चाइना को एक तरह से घेरा जा रहा है ना, और चाइना भी इस चीज को महसूस कर रहा है, लेकिन चाइना डायरेक्ट जो है इस थ्रेट को जो है वो बाकायदा कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, अमेरिका जो उसकी सबसे बड़ी मार्केट है, वो भी मुतासिर ना हो, और उसके साथ साथ जो है वो उसका तेल का सिलसिला जो है वो खुल जाए। क्यों? कि चाइना अब दुनिया की जो आने वाली इकोनॉमी है उसमें और आने वाली जो सियासत है उसमें बराबर का फरीक बनना चाहता है, और लेकिन गालिबन वेस्ट जो है वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं है। नतीजा उसका ये है कि ये जो है अपना आबराय हॉर्मुज की जो ब्लॉकेज है उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो चाइना के पास पड़ रहा है, लेकिन चाइना दूसरे तरीकों से क्योंकि चाइना भी जो है वो भी देखिए दीवार के पीछे सदियों तक रहने वाले लोग हैं। लेकिन डिप्लोमेसी में चाइना, आप देखें कि रशिया के टूटने के बाद कहा गया था कि अब एक ही कम्युनिस्ट मुल्क रह गया है जिसका नाम है चाइना। आज चाइना जो है वो कैपिटलिस्ट दुनिया का हिस्सा भी है तिजारती, लेकिन उसके साथ जो है मुल्क में उनके जो है कम्युनिस्ट पार्टी पावर में है। ये आप देख लें, इससे पता चलता है कि भाई खाली वेस्ट के जो है हिस्से में अकल नहीं आई है। अकल जो आई है वो दीवार के पीछे रहने वाले चीन या सदियों पुराने ईरान या इस किस्म के जो छोटे बड़े ममालिक हैं, सिर्फ उनकी ताकत का तवाजुन जो है वो नहीं है जो बड़ी ताकतों का है। लेकिन ये जरूर है कि चीन अब वो उस जगह पर ताकत के हवाले से भी है कि वो बाकायदा आमसरी करता है। और उसने, आप ये देखें कि ट्रंप साहब जब गए हुए थे चाइना तो उसने कितनी सफाई से प्रेसिडेंट शी ने ये कहा कि अमेरिका इज ऑन डिक्लाइन और मुंह पर कहा। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो हर आने जाने वाले लीडर को जो है वो उनसे लड़ते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, खामोशी से सुन लिया उन्होंने। क्यों? कि रियलिटी यही है कि समथिंग इज बीइंग ग्रूमिंग अप, दैट्स इन द ग्रूम, और वो ग्रूमिंग हो रही है उसकी वो अपने वक्त के ऊपर। चाइना जो है वो ये नहीं चाहता कि लड़ाइयां लड़के या मतलब के ये करके जो है वो बाकायदा इस इकोनॉमी का जो इकोनॉमिक उसकी डोमिनेंस है उसको वो मुतासिर करे। लिहाजा सबसे बड़ा मुतासिर करना जो मुल्क है वो आबनाए हुरमुज से, वो आपको पता है कि चाइना है। क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा सप्लाई ईरान से गई है। और अगर आपने मोदी साहब को सुना हो तो वही मोदी साहब जो चाबहार में ठेके लेकर बाकायदा पोर्ट्स बना रहे थे, आज उनका हाल ये है कि वो कहते हैं जी ईरान जो है ये भी दहशतगर्द मुल्क है और इसराइल और इंडिया जो है इनके गोल कॉमन्स हैं। और वो कॉमन गोल क्या है? अखंड भारत, जिसमें वो ये कहते हैं जी अफगानिस्तान हमारे झोल में झोली में गिरेगा, बांग्लादेश हमारी झोली में गिरेगा, ये बाकी सब गिर जाएंगे और पाकिस्तान जो है इससे हमने निपटना है, इसको हम ठीक करेंगे। तो अब आप ये देख लें कि अखंड भारत का नारा भी आपके सामने आ गया, और इधर वो कहते हैं जी अखंड इसराइल के ग्रेटर इसराइल जो है इसी तरह ग्रेटर इंडिया बनाना चाहते हैं। ये आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और उनके लीडर जो हैं उनके ख्याल आते हैं। उसके बाद अब वही ईरान जो है वो मोदी साहब की तनकीद का और मुखालफत का निशाना बना हुआ है।
बात चुकी, मगर मेरा ख्याल है बहुत सारे इंडियन जो इस बात को द टाइमिंग ऑफ दिस वॉर वॉज नॉट राइट, के मोदी साहब डिप्लोमेटिक चलने वाले इंसान हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही वेंट टू इसराइल और नो सूनर ही रिटर्न्ड बैक और ये इसराइल भी अटैक कर देता है। बहरहाल इसराइल की बात कर लें या किसी और मुल्क की बात कर लें, बहुत सारे लोग इससे पहले
मुझे कहने की इजाजत दें कि हालात ने मोदी साहब को मजबूर किया था इसराइल जाने के लिए। वो भी अपनी मर्जी और खुशी से नहीं गए थे, वो ज्यादा से ज्यादा बार्गेन वो तजारती आदमी है, कमर्शियल मतलब के मोटिव है उनके, वो मफादात हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हर मुल्क से बार्गेन किया जाए, अमेरिका से भी वो बार्गेन करते हैं। तो ये बार्गेन करना वैसे उनका हक है, ये बात नहीं है, लेकिन वो ये ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। मगर उस वक्त जो है मेरी रीडिंग ये है कि वो मजबूर होकर गए थे क्योंकि पाकिस्तान से उनको ये तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इतना मौसर मतलब दिफा अपना कर सकेगा और जवाब उनको दे सकेगा।
बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको इंटरनेशनल स्केल से, जाहिर है जितने भी एलाइज हैं वो तमाम के तमाम तो सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा, एक और चीज जो मेरी नजर से गुजरी मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ कि वन ऑफ द रीजन इज के चाइना को ब्लॉक करना चाहते हैं और स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के बाद, क्योंकि ईरान के ऊपर सख्ती ज्यादा है कि ईरान के शिप्स नहीं निकल सकते, जो बाकी शिप्स हैं उनको तो फिर भी गुजरने का रास्ता दिया जा रहा है और ईरान की ज्यादा शिपमेंट कहां जाती है, दैट गोज टू चाइना। तो बेसिकली स्टेट ऑफ होर्मुज का बंद करने का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो चाइना को मिला है और उसकी सजा है। तो दिस इज नॉट ओनली यूरेनियम, बेसिकली to block China, this is what is happening. But there is another thing.
अच्छा, मुझे ये कहने की इजाजत दें, अभी आपने इराक का भी जिक्र किया कि इराक जो है उसका न्यूक्लियर, मैं इस बात का तारीखी तौर से शाहिद हूँ कि जो अक्वाम मुतहदा का जो एग्जामिनर मुकर्रर किए गए थे वो नॉर्वेजियन कंट्रीज के मतलब के नुमाइंदे थे और उनको फिर बाकायदा निकाला गया, इसलिए गया था कि उन्होंने ये कहने से इनकार किया, उन्होंने साफ वाजे तौर से कहा था कि इराक के पास कोई न्यूक्लियर नहीं है, ना न्यूक्लियर पोटेंशियल है, ना कोई किसी किस्म के सबूत मिले हैं। उस पर जो है उनको बाकायदा अकवाम मुत्तहदा से मेरे सामने मतलब के निकाला गया था और उसके साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी हुआ था कि वहां पर जंग के बाद भी, तबाही के बाद भी इराक से कोई आज तक आपको न्यूक्लियर ट्रेसेस नहीं मिल सके। आज भी दुनिया इस बात को, बल्कि अमेरिका भी अब इस बात को तस्लीम करता है कि खाली ये एक मतलब पुलाय था कि दुनिया को ये बताने के लिए, और जिसके लिए कोलिन पावल को शिकार बनाया गया कि ऐसा खत तैयार किया गया जिसमें ये कहा गया कि वो जी उनके पास एटमी हथियार हैं और वो न्यूक्लियर होने जा रहा है। इराक भी नहीं था, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि न्यूक्लियर इज वन प्रीटेस्ट, वन स्केप, और जिसको आप ये कह लें कि भाई एक इल्जाम या जो बात आपने कहनी वो करें, वरना ईरान ने जो ओबामा के साथ जो कुछ उन्होंने किया है अपना ओबामा के साथ वो आपके सामने है। और उस डील को जो है आप ये देखिए कि सदर ट्रंप ने बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट किया है,
डिस्ट्राइक किया,
हालांकि ओबामा और ईरान की जो डील थी न्यूक्लियर के मामले में वो बहुत अच्छी मतलब डील थी। और दूसरी बात यह है कि ये मुझे बताइए कि अगर इसराइल जो है ना किसी क्लब का मेंबर है, ना आईएईए के सामने जवाब दे, किसी के पास जवाब नहीं, यानी अनअनाउंस्ड डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन ईरान में अगर जो है वो कहीं पर या किसी और मुल्क में, ये पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान पे आप देखिए कितनी पाबंदियां लगी, लेकिन पाकिस्तान के जो साइंसदान थे अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उनकी मतलब है कि उन पर अपनी रहमतें नाजिल करे, उन्होंने खामोशी से किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को जो है वो न्यूक्लियर पावर दे दी है कि जिसकी वजह से ये डेटरेंस जो है पाकिस्तान के पास आ गया है। अल्लाह ताला इसको जो है हर अपने मतलब दुश्मन से और मतलब महफूज रखे। अब देखिए कि पाकिस्तान का एक रोल है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर हुआ है कितने ममालिक को, ये क्या बात है कि सिर्फ चार या पांच जो आलमी ताकते हैं उनके पास सिर्फ क्यों है, वो क्यों नहीं तलब कर देती अपने न्यूक्लियर वेपन वो भी तलब कर।
बहुत शुक्रिया मियां साहब 1960 में जेफ कैनेडी टुक अ वेरी स्ट्रांग स्टैंड ऑन इट। जेफ कैनेडी की असैसिनेशन आपको पता है उसके पीछे किसका नाम आ रहा है। 1965 में अमेरिका का न्यूक्लियर मटेरियल चोरी हुआ था, उसका इल्जाम भी एक इन्हीं इसराइल के ऊपर आया था, हालांकि वो फाइलों को फिर दबा दिया गया। आपको बताइए कि क्या सूरत हाल है। 1965 का आप गूगल करके देख लीजिएगा कि कितना न्यूक्लियर मटेरियल जो अमेरिका का चोरी हुआ था और कहां गया था वो। तो बहरहाल
आप ये देखिए, आप ये भी याद रखें कि जॉन एफ कैनेडी साहब के जमाने में इंडिया को जो है बाकायदा हैवी वाटर जो सप्लाई किया गया था वो भी एक वही कदम था कि कैनेडी साहब एक तरफ तो मतलब है कि ये सारी चीजों के लिए ना दूसरे ममालिक से नाराज थे, लेकिन इंडिया को जो है वो हैवी वाटर, तो बड़ी ताकतें जो हैं अपने मफाद के तहत किसी को न्यूक्लियर पावर बनाने के चक्कर में रहती हैं और किसी को न्यूक्लियर का तजर्बा करने से भी मतलब रोकती हैं। तो मतलब बात यह है कि डिसआर्मामेंट जो है इसकी क्यों नहीं होता कि भाई यहाँ आप आर्मामेंट आप खत्म करें, आप एटमी हथियार खत्म करें, आप न्यूक्लियर जो है एनर्जी जो है इसका कोई अल्टरनेट आप ढूंढे, ये नहीं होगा। यानी दुनिया में पांच ताकतें जो हैं वो एटम बम बरसाने का इख्तियार भी रखती हैं, एटम बम तो रखने का इख्तियार भी रखती हैं, सारी कुवत रखती हैं, और लेकिन जब किसी और कोई अगर बनने की कोशिश करता है तो वो जनाब अली जो है उसको आप पराया कह देती हैं, उसको आप ये कह देते हैं कि जी ये जो है ये रोग कंट्रीज हैं।
मियां साहब शुक्रिया, मुझे पता है कि आपके पीछे कोई आपको तंग भी कर रहा है और आप एक वक्त में दो या तीन काम कर रहे हैं, बड़ी आफरीन है आपके ऊपर। मेरे दो सवाल बड़े इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि अमेरिका में एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप के حامی ہیں ان کو ان سے جب سوال جواب کیے. 250th آپ کو پتا یہ سیلیبریشن جو ہو رہی ہے برتھ ڈے 250 سالویں برتھ ڈے, اور اس حوالے سے کہ بھائی پرومس کیا تھا جنگ کا, اس نے کہا یس یو کاٹ می. انہوں نے دوسرا سوال کیا یو کاٹ می, دوبارہ تم ووٹ دو گے, اس نے کہا آئی تھنک اباؤٹ اٹ. ایبسٹنٹ فائلز کو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ انہوں نے کرنا ہے. آج نیو یارک ٹائمز نے جو بمب شیل گرایا ہے کہ ٹکر وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے ٹکر کارلسن, بیکاز ہی یوز ٹو بی ود دا فاکس, اس کو کہا تھا کہ گیزلین میکسویل کا انٹرویو کرے. تو یہ سنا ہے کہ ایک بمب شیل ہے, اور نیو یارک ٹائم نے سکھایا دے آر فریکڈ آؤٹ, آئی مین وائٹ ہاؤس از فریکڈ آؤٹ, گھبراہٹ اور افراتفری کے عالم میں ہے, اور وائٹ ہاؤس اور یہ دس از ناٹ واٹ آئی ایم کورنگ, اٹس کورڈ بائی دا نیو یارک ٹائمز. اور کیا فرمائیں گے کہ آپ دیکھیے مغرب پہ تو ہر چیز میسر ہے, امیر امیر آدمی جن کے پاس پیسہ بھی ہے, اور مائکروسافٹ کی کہتے ہیں کہ فیملی بریک ڈاؤن, ان کی ڈائیورس کی ون آف دا کاز واز کہ ہز وائف وین شی کیم ٹو نو اباؤٹ دیز فیکٹس اباؤٹ دا ایبسنٹ فائلز, وہ سیپریشن بھی ہو گئی تھی. تو یہ آج نیو یارک ٹائمز نے جو کور کیا ہے, کوئکلی اس کا بتاتے ہوئے مجھے پاکستان لے چلیں کشمیر.
جی لیکن دیکھیے اس میں یہی نہیں ہے, یہ کنٹراڈکشنز ہیں. آپ اسے دیکھ لیں کہ اس وقت امیگریشن کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, امیگرینٹس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں نا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں طرفہ تماشا یہ ہے کہ جے ڈی وینس صاحب کی بیوی جو ہیں وہ بھی ایک امیگرینٹ ہیں, اور ٹرمپ صاحب کی بیوی جو ہیں ملینیا دا فرسٹ لیڈی وہ بھی مطلب ہے کہ اسی میں سے. نہ صرف یہ دونوں کی بیویاں جو ہیں وہ امیگرینٹ ہیں, اور وہ امیگرینٹس کو برا کہہ رہے ہیں, نیگیٹو کہہ رہے ہیں, یہ تو اس کو کھلا تضاد ہی کہتے ہیں.
نو بڈی ہیز اے کریج اینڈ کرٹیسی ٹو آسک دیم نا, نو بڈی ہیز اے کریج ٹو آسک.
نو 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 دیر آر پیپل یو نو, بٹ دا تھنگ از دیر کریج از ناٹ بینگ ہائی لائٹڈ. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ میڈیا کن حالات سے گزر رہا ہے. آپ کو تو اس لیے اندازہ ہونا چاہیے,
بدترین ہے سر, بدترین صورتحال ہے, بدترین صورتحال ہے. بلکہ ایف سی سی کے جو کمشنر ہیں ہی از پرو ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے. اور اینی بڈی جمی کیمل آپ کو پتا ہی انہوں نے کتنی اس کی پرائز پے کی ہے. ابھی ریسنٹلی جو سی این این کی ایک ہوسٹ ہے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں, امریکہ از ریئلی ان اے ڈیکلائن, ایک عورت اور امریکنز یہ کہتے ہیں مسلمان عورت کو رائٹ نہیں دیتے, کر لو بات. اچھا
آرفا جی یہ تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت ہی ہائی لائٹڈ کیسز ہیں, اس سے اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کو دیکھ کے مطلب کہ بعض ممالک میں آپ کہتی ہیں تو بعض جگہ جو ہے یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے یہ افریقن کنٹریز جو ہیں وہاں پریس فریڈم جو ہے آج کل ذرا زیادہ بہتر پائی جاتی ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتی ہیں کہ کس کس محاذ پر کس کس طرح میڈیا کو, اور یہ نہیں ہے ٹرمپ صاحب تو دیکھیے جتنے میڈیا ان کو آبجیکٹولی کریٹیسائز کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہتے ہیں وہ سب کو پتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جن کو وہ ٹچ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کیا صورت حال ہے, آپ کو اس کا بھی اندازہ نہیں. یہ صرف میدان میں جو لوگ کھیل رہے ہیں یا جو لوگ برسر عمل ہیں ان کو اندازہ ہے. آپ اگر ایسا کریں کہ ساز و آواز کو لے کر نیو یارک آئیے اور یہاں سے بیٹھ کے ذرا یہ سب باتیں کیجیے تو پھر اس کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا.
نہیں سر, ایون یہاں سے دس از اے پرابلمٹک سچویشن ایون ایٹ دا مومنٹ. میں آپ کو پاکستان لے کے جانا چاہتی ہوں, اور ابھی جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بھی اہم بیان آیا ہے کہ یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی یعنی عوامی ایکشن کمیٹی, اس کی تاریں کہیں اور سے ہل رہی ہیں, آڈیوز بھی آئی ہیں کہ پیچھے کون ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی, مگر پاکستان کے جو معتبر جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس نے اپنے آپ کو ٹارنش کر لیا ہے, یعنی ایک کشمیریوں کی نفرت مول لے لی ہے. کچھ اس کے بارے میں فرمانا چاہیں گے آپ؟
جی بالکل, دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں. انٹرنیشنلی ہم آج سے نہیں جب سے یہ کشمیر کا تنازع کھڑا ہوا ہے ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی انڈیا کو بیٹھ کے پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس کو ہم نے یونائیٹڈ نیشن میں انڈیا خود ہمارے ہاتھ سے مار کھا کر کشمیر پہ آیا تھا, اور جنگ بندی کی اپیل انڈیا نے کی تھی, ہم نے نہیں کی تھی. लेकिन उस जंग बंदी के बाद ये भी तय हुआ था कि डायलॉग होगा और मसले का हल होगा। हम हमारी पूरी कश्मीर पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी जो है वो ये है, हम डायलॉग के जरिए मसाइल को हल करना चाहते हैं, हम डायलॉग के मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा कश्मीर को हल करना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ जो हमने अंदरूनी सूरत हाल पैदा की है ये इंतहाई अफसोसनाक है, और ये बात यह नहीं है चाहे एक इंसान की जान हो या 50,000 मतलब 2,000 आदमियों की जान हो, हर इंसानी जान जो है अपनी जगह पर, उसका एहतराम मुसल्लम है। अब अगर यहां पर अमने अमाना अम्मा की वजह से यूनिफॉर्म पहने हुए लोग या बगैर यूनिफॉर्म के जो सिविलियन हैं अपने मुतालबात का एहतजाज करते हुए जो है वो अगर वो कर मर रहे हैं तो इसका जवाब किसको देंगे। दूसरी बात यह है कि अब आप ये बताइए कि आपने उस पार्टी के साथ जो जिनकी आप कहते हैं तारे, यहां तो फिर आप ये करें, इस वक्त प्रॉब्लम जो है ना सबसे बड़ी आयफा वो ये है कि जो डिप्लोमेसी भी की जा रही है ना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, पाकिस्तान के कितने अवाम को आपने कॉन्फिडेंस में लिया है मुझे ये बताइए। नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन, ये होती है पॉलिसी। ट्रंप साहब जो है वो तो रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर अपने बयान लिखते रहते हैं, ठीक है जो भी उनके हैं आप उससे डिसएग्री करें, लेकिन
पाकिस्तान गवर्नमेंट इज डूइंग,
पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है
नोबडी नोज,
वो उसका अवाम का कितना अमल दखल है, अवाम को कितना मालूम है, उसके कितने पहलुओं पर अवाम की राय ली जाती है, नहीं ठीक है। एक बात, दूसरी बात यह है कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है उस पर आप ये कह देते हैं जनाब के आपको मतलब है कि वो मतलब देखिए जी वो मुल्क दुश्मन है। मैं कहता हूं कि मुल्क दुश्मन के जो है उसका आप जब आपकी एजेंसियां हैं, आपकी आईबी है, आपके मुख्तलिफ किस्म की एहसास एजेंसियां, उनसे कहें कि वो सारे सबूत लाके पब्लिक के सामने रखें। ये डिसाइड पब्लिक करेगी, हुकूमत क्यों करेगी, हुकूमत वक्ती तौर से होती है, आवाम के नुमाइंदा हैं आप, लेकिन आपका कहना काफी नहीं है। कितने मामलात में हम देखते हैं कि हमारी हुकूमतें माजी की जो है झूठी साबित हुई है, बाद में हमारे लीडरान जो है झूठ बोल जाते हैं।
सर मेरा यहीं पे मेरा एक सवाल आ गया,
कश्मीर में, हाँ जी कश्मीर में अगर कुछ है, कोई अगर पार्टी ऐसी है जो मुल्क दुश्मनों के साथ मिली हुई है, तो बात यह है कि वो एजेंसियां क्या कर रही है, रोकी रोका क्यों नहीं उन्होंने, उसको अवामी तहरीक क्यों बंद देती है फिर वो।
अच्छा
दूसरी बात यह है कि जिस वक्त वो अशखास जो किसी मुल्क दुश्मनी में मुलव्वज़ हैं, किसी मुखालिफ मुल्क के मतलब के अपना एजेंट बने हुए हैं, आप उनको गिरफ्तार करके अदालतों में लाइए, सजाएं दिलाइए, उनका उनका आप पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने लाइए।
सही।
आज तक अय्यूब खान के पीरियड से आज तक मुझे आप ये बताइए कि आपने फिर क्या किया अफगानिस्तान में, अपना माजल के साथ बलूचिस्तान में, मैं मुशर्रफ साहब के साथ बराह रास्त ये कई दफा कहता रहा हूँ कि हुजूर बलूचिस्तान जो है इसके ऊपर आप जो डोजिए लाके अक्वामे मुतहद्दा में इधर उधर जमा कराते हैं, खुफिया रहते हैं, किसी को पता नहीं, तो इसके उसको इंटरनेशनलाइज करने का आपको फायदा क्या है। आप वो सारे सबूत जो है वो सामने लाइए। और दूसरी बात है कि इंडिया वहां इन्वॉल्व है, विदाउट एनी डाउट इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप उसके सबूत क्यों नहीं सामने लाते, नहीं ये जी ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये हमारी कमजोरी है। अब ये आप इस किस्म के अगर जब बयान देती है तो फिर उसमें पब्लिक को जो है पब्लिक का ना कॉन्फिडेंस है, ना पब्लिक को आप कॉन्फिडेंस में लेते हैं, आप समझते हैं कि आप एक रूलिंग चेयर पे बैठे हुए हैं, लिहाजा मुस्तमद है आपका फरमाया हुआ। अब कितने बयान अगर आप तजिया करें तो मुशर्रफ साहब के गलत बयान साबित हुए, कितने मतलब अय्यूब खान साहब के बयान गलत साबित हुए, कितने जितने लीडर आप ले लीजिए हुकूमतें ले ले, मैं एक हुकूमत की बात नहीं करता हूँ, उनके बयान कितने कितने गलत हुए।
सही, सही।
उसमें खान साहब भी शामिल है। तो बात ये नहीं है, बात यह है कि आवाम को आप एतमाद में लेना कब सीखेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि अगर मुल्क के किसी हिस्से में कोई बदअमनी होती है तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं, खाली आप पुलिस यहाँ मतलब है कि मुसल्ला पुलिस से या गैर मुसल्ला पुलिस से या यूनिफॉर्म जो मतलब है कि लॉ एनफोर्समेंट है आप उसको कहते हैं कि आप जाके इसको वो कर दें। अब ये देख लीजिए ना, मुशर्रफ साहब ने कहा था कि अकबर मुक्ति नहीं जानते कि हम कहां से उनको क्या करेंगे, उन्होंने कर लिया, लेकिन आज जो है अकबर मुक्ति की मौत जो है उसके उसकी भी मतलब की कीमत हम अदा कर
चुका रहे हैं,
पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। तो खुदा के लिए ये जो भी हमारे हुक्मरान हैं उनसे दस बस्सा ये अर्ज है कि अवाम को एतमाद में लें, कुर्सी पे एतमाद ना करें, कुर्सी जब हटती है ना तो फिर उसमें ये भी देख लीजिए कि भुट्टो जैसा दानिश्वर जो है वो उनके साथ क्या सलूक हुआ, आने वालों ने क्या सलूक किया था।
बहुत शुक्रिया मियां साहब। यहाँ मेरा एक सवाल यहाँ पे आ रहा है कि इस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जो मसला चल रहा है वो कहते हैं भाई ये जो 12 सीटें हैं महाजरीन के लिए निकालें, क्योंकि इन 12 सीटों को आप कश्मीर में मदाखलत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 7 जून को इस मामले पर एक दरख्वास्त पर जो अपना रेफरेंस दिया है उन्होंने कहा कि जो महाजरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे के लिए आईनी तरमीम दरकार है, जो आइंदा इंतखाब के बाद गवर्नमेंट बनेगी वो कर सकेगी। तो भाई इस वक्त जो गवर्नमेंट है 27 जुलाई को आपका इलेक्शन है, तो आपकी जो इस वक्त की कोई ना कोई तो गवर्नमेंट है ना, कोई ना कोई तो वजीर आजम है, इमरजेंसी में आप इसका हल कर लें। आप आईनी तरमीम अगर करनी है तो अभी करके, वो अगर लोगों को इतराज है कि ये जो 12 महाजरों की सीटें हैं इनको निकाल लें, वो पंजाब में भी वोट डालते हैं, वो कश्मीर के लिए भी वोट डालते हैं, तो निकाल भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? तो वाई टू वेट फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, वाई नॉट बाय दिस गवर्नमेंट?
आरिफा मैं आपसे अर्ज करूं कि कश्मीर के जितने माशाल्लाह से लीडरान हैं, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि जब भी वो यहाँ कहीं कभी आए हैं, चाहे वो सरदार कयूम साहब हों, चाहे उनके बाद के आने वाले बैरिस्टर सुल्तान हों, कोई भी हों, उनसे मुझे बैठकर इन सारी चीजों पर बात करने का इत्तेफाक मजा हासिल हुआ है। देखिए उसूली तौर से आप देखें, बाकी चीजों को आप छोड़िए, उसूली तौर से आप मुझे ये बताइए कि एक बंदा जो है कराची में 300 वोट लेकर जो है वो कश्मीर की असेंबली का मेंबर बन जाता है और वजीर भी बन जाता है, और मीरपुर या कोटली में या आगे सरहदी इलाकों में जो है लोग पड़े हुए हैं जो हैं, जो हर वक्त वो इंडियन गोलाबारी की जद में भी रहते हैं, वहां से वो हजारों में वोट ले तो तब कहीं जाके वो बनता है। तो ये पहली बात तो ये कि ये कौन सा जमहूरी निजाम है कि जिसके अंदर अदम मसावात है? क्यों है अदम मसावात कि एक बंदा लाहौर से जो है 300 वोट लेकर जो है मेंबर आजाद कश्मीर,
क्योंकि ये फिर 12 बंदे टेम्परिंग कर सकते हैं ना, ये अपने 12 बंदे लगा सकते हैं, मतलब
नहीं तो अगर वो जो भी टेम्परिंग है ये कुछ भी हो जाए, इसका मतलब ये है कि ये जमहूरी निजाम तो नहीं है ना?
नहीं है, जमहूरी
मुसावात नहीं है। यानी लाहौर में अगर कोई कश्मीर से आकर आबाद भी हो गया है, कारोबार भी कर रहा है, पैसा भी बना रहा है, मकान भी खरीद लिया है, गाड़ियां भी रखी है, नौकर भी रखे हुए हैं, तो उसको तो आप इतना प्रिविलेज करार देते हैं कि वो जनाब अली उसका एक वोट जो है मीरपुर में बसने वाला जो कश्मीरी है आजाद कश्मीर में उसके 100 वोट से भी ज्यादा क्या 1000 वोट के बराबर
या। और ये ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं जो बाहर बैठा हुआ है वो उधर भी वोट डालता है उधर भी।
फिर ये नहीं है, आप ये देखें कि लंदन में जो है कश्मीरियों की इतनी बड़ी आबादी है, आप उनको कैसे रोक लेंगे? वो मुजाहरे करेंगे, आप उनको मुल्क दुश्मन करार दे देंगे? भाई बैठो, मसाइल अगर होते हैं, हुकूमत का मतलब ये होता है मसाइल हल करना, हुकूमत का मतलब ये नहीं होता कि वो आगे कुर्सी इख्तदार पे जो है
नहीं, नहीं, मगर
अकड़ के बैठी रहे।
नमिया साहब मेरा सवाल ये है कि अब हुकूमत पाकिस्तान ने इसका कहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट नॉट हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो आईनी तरमीम का फैसला जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो करेगी, तो अभी भी तो गवर्नमेंट वहाँ कोई ना कोई है ना, तो बिफोर इलेक्शन व्हाई डोंट दे डिसाइड इट नाउ?
अरे बात दूसरी बात ये है कि ये इतने सालों के अंदर आपने ये किस किस्म की हुकूमतें और किस किस्म के ये दानिश्वर हमारे जो हैं कि जाती मतलब तारीफों को मिलने के बाद जो है फैल के चलना शुरू हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए ना कि भाई कश्मीर के में अगर ये एक आपको डेफिशिएंसी नजर आ रही थी तो पिछली हुकूमतों में क्यों इलाज नहीं किया?
नहीं किया
पिछली हुकूमतों में, ये मतलब मौजूदा हुकूमत का भी सेटअप था। उससे पहले जो है पीपल पार्टी का दौर था, तो वो पीपल पार्टी आज भी हुकूमत का हिस्सा है। आप कोई और पार्टी ले लें, फजलुर रहमान ले लें, वो भी तो क्या पाकिस्तान के सारे लीडर जो है वो सिर्फ वक्ती तौर से एडहॉकिज्म के मतलब कायल है या जो उन्हें सूट करता है वो कायल है उसको वो अकले कुल करार देते हैं? नहीं, अकले कुल वो है जिसमें मफाद आमा हो, जिसमें अवाम का फायदा हो, अवाम को रोटी मिले, अवाम को सुकून मिले, अवाम को जमहूरी आजादी मिले। तो आरिफा के और अजीम मियां के जो हुकूक हैं, सिविलियन हुकूक हैं, वो यकसा हो। ये क्या मतलब है? ये क्या तरीका है कि आने वाली हुकूमत क्यों करेगी भी? आप क्या है? جو حکومت پاور میں آتی ہے وہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آتی ہے.
یہ بارہ
اور اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر تو یہ جو بھی یہ جو اپنا لا انفورسمنٹ کا جو استعمال ہے, آپ نے پچھلی دفعہ اسی پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے بیٹھ کر اور آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب ٹھیک نہیں کیا, آپ نے بکتی طور سے ٹائم ٹائم ارینجمنٹ کر کیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی آپ نے.